नमस्कार दोस्तों, छिंदवाड़ा ओबरेन सबका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। पूरी दुनिया में हर साल 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना और उनके संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। साल 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पारित कर पूरी दुनिया में सभी लोकतांत्रिक देशों में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस को इन तिथि को मनाए जाने को लेकर प्रस्ताव पास किया गया था और इसी को लेकर आज की थीम रखी गई है, अगली पीढ़ी को सशक्त बनाएं। आज हमारे साथ गांधीवादी लोहियावादी विचारक डॉक्टर अनूप सर जुड़े हुए हैं। अनूप सर, मोबाइल में स्वागत सर आपका।
नमस्कार योगेश भाई, नमस्कार।
जी सर, इस अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे सर?
अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर हमारा संदेश यही है। सबसे पहले तो मैं पूरे विश्व के नागरिक और लोकतंत्र प्रिय लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।
जी
और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो जनता को चाहिए कि अपने द्वारा चुन करके दी गई जो सरकार है, जो चुन करके दे रही है, उस सरकार पर एक नियंत्रण रखे।
जी
और वह नियंत्रण उसी समय रह सकेगा जब जनता अपने स्वार्थ को त्याग कर, जनता अपने जाति धर्म और मजहब को त्याग करके लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए वोट देगी। उसी समय लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। और लोकतंत्र का जो बेस होता है वो समानता होता है। तो जनता अपने अंदर से, अपने मन से और अपने दिमाग से समानता लाने का प्रयास करे और जो दिमाग के अंदर संकीर्ण मानसिकताएं हैं उनको समाप्त करे, जो कचरा भरा है उसको समाप्त करे और लोकतंत्र के बारीकियों पर, लोकतंत्र के अधिकारों पर और लोकतंत्र के स्तंभों पर खड़ा होकर के सोचे और जब चुनाव में हिस्सेदारी करे तो अनिवार्य रूप से अपना 100% देकर के हिस्सेदारी करे और पूरी तरीके से हिस्सेदारी करे। इसलिए कि हम अपना नहीं बल्कि आने वाले भविष्य, आने वाले 5 साल, आने वाली दुनिया के भविष्य को तय करने जा रहे हैं। तो लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो जनता अपने स्वार्थ को त्याग करके इस लोकतांत्रिक पर्व में हिस्सेदारी करे।
जी सर, सर आज के दिवस जो लोक अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो मनाया जा रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी है या इस दिवस को मनाने के लिए जो 2007 में प्रयास किए गए थे, तो इसको क्यों आवश्यकता आन पड़ी सर इसके लिए?
आवश्यकता इसको कहा भी जा सकता है और इसलिए भी कहा जाए क्योंकि यह जागरूकता है।
जी
और दुनिया को अगर चलाने का सबसे कोई बेहतरीन व्यवस्था और कोई बेहतरीन रास्ता है तो लोकतंत्र है। इससे बेहतरीन कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है, इससे बेहतरीन कोई रास्ता नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर एक ऊपरी लेवल पर बैठा हुआ व्यक्ति और एक नीचे बैठा हुआ व्यक्ति दोनों समान होते हैं राजनीतिक अधिकारों के मायने में। इसलिए लोकतंत्र के दिन को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए ताकि लोग समझे कि हमारा लोकतंत्र क्या है, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार क्या है और हम अपने लोकतांत्रिक अधिकार के बदौलत हम क्या-क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस अधिकार को कुचल दिया जाएगा, इस अधिकार को जनता तक नहीं बताया जाएगा तो हो सकता है कि जनता अन्याय से पीड़ित हो जाए, जनता अन्याय से कराहने लगे। इसलिए जो लोकतंत्र होता है वह न्याय की स्थापना करने का भी दिन होता है। इसलिए इसकी आवश्यकता है कि आज दुनिया के अंदर जो विविध प्रकार की विषमताएं हैं और विशेष करके भारत के अंदर, अपने देश के अंदर, उन विषमताओं को समाप्त करने का अगर कोई व्यवस्था है तो लोकतंत्र है। इसलिए हमें लोकतंत्र को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। लोकतंत्र की बात को, लोकतंत्र का जो आधार है असमानता, लोकतंत्र का आधार है जो जातिवाद को समाप्त कर दिया जाए, लोकतंत्र का जो आधार है कि सांप्रदायिकता को समाप्त कर दिया जाए, उसको जन जन तक पहुंचाया जाए ताकि लोग खुद लोकतांत्रिक हो और जो सरकार का चुनाव करे वह भी लोकतांत्रिक हो।
जी सर, सर हालिया में G20 सम्मेलन हमारे देश में संपन्न कराया गया नई दिल्ली में,
जी
और सर इसको लेकर जो प्रेस वार्ता होती है ये नहीं कही गई और जो विदेशी मेहमान थे उनको दूसरे देशों में जाकर प्रेस की लेकर उनको बयान देने पड़े सर, तो इस तरीके के जो वाकयात होते हैं सर, तो ये
जी
सर लोकतंत्र में इस वाकयात को किस तरीके से देखते हैं सर आप?
लोकतंत्र का जो चौथा आधार स्तंभ कहा जाता है वो मीडिया कही जाती है।
जी
आज आप देखिए योगेश भाई, दो बातें बहुत प्रभुता से सामने आ रही है। पहला कि सरकार तानाशाह होती जा रही है, और दूसरी जो बात आ रही है कि मीडिया भी अपनी भूमिका को समाप्त कर रही है, मीडिया भी सरकार की चरण पादुका बनने की प्रयास कर रही है, मीडिया भी सरकार की चरण शोभा बढ़ाने का काम कर रही है। तो अगर मोदी जी ने मीडिया वालों को इंटरव्यू नहीं दिए है, विदेशी मेहमानों को इंटरव्यू नहीं देने दिए है, तो इसके पीछे भी मीडिया का कारण है कि मीडिया ने 9 साल में मोदी जी से कभी सवाल नहीं किया कि आप आखिर साक्षात्कार क्यों नहीं दे रहे, आप मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे। आप भारत के चैनलों को उठा करके देख लीजिए तो भारत के कम से कम 10 से 12 चैनल जो है प्रतिदिन मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं, मोदी जी सवाल नहीं करते। तो पहली बात यह है कि मीडिया अपने आप को समर्पण कर चुकी है। दूसरी बात कि जो हमारी सरकार है वो तानाशाही पूर्ण नीतियां अपना रही है, जबकि सरकार को तो चाहिए कि हमारे पत्रकार बंधुओं को जाने दे, चाहे वो विदेशी पत्रकार हो चाहे भारत के पत्रकार हो, सबको उस समिट में शामिल करना चाहिए और अपनी बात उनसे करना चाहिए, और उसके बाद सभी लोगों को मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए ताकि G20 में कौन सा निर्णय लिया गया, आने वाला भविष्य कैसा होगा, उसको जनता तक पहुंचाया जाए, दुनिया तक पहुंचाया जाए। परंतु आप देखेंगे कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी है ये एक प्रकार के इवेंट मैनेजमेंट है, ये हर बात में अपनी फोटो खिंचाने के लिए आतुर रहते हैं और केवल फोटो खिंचाने का काम करते हैं। और दूसरी बात ये भी देख लीजिए योगेश भाई कि अभी भारत अध्यक्षता कर रहा था G20 का, अब अगला अध्यक्ष कौन बन गया, ब्राजील बन गया। क्या ब्राजील के देश इस प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से भारत के अंदर किया गया? तो इस बात को प्रचार प्रसार करने का काम किसने किया, भारत की मीडिया ने तो की? भारत के मीडिया ने G20 की अध्यक्षता के भारत को इस प्रकार से दिखाई जैसे भारत का उदय अभी ही हुआ है और भारत ही G20 को बनाया है, इसके पहले भारत के अंदर कोई समिट ही नहीं हुआ। तो मीडिया जो की है उसका भुगतान भुगत रही है, परंतु सरकार को यह चाहिए था, मोदी जी को यह चाहिए था कि अपनी लोकतांत्रिक छवि को अगर उनको बढ़ाना था तो मीडिया के सामने आते, परंतु हमारे प्रधानमंत्री जी मीडिया के सामने नहीं आते, परंतु मीडिया को पीछे से वो जरूर जो है बैकअप करते हैं और मीडिया उनके कहने के अनुसार ही चलती है। तो इसमें पत्रकारों की भी गलती है, भारतीय मीडिया की भी गलती है कि वो सरकार के सामने समर्पण कर रही है। और मोदी जी की तानाशाही पूर्ण नीति है तो मीडिया को चाहिए कि जनता में जाए और बताए कि इनकी तानाशाही पूर्ण नीतियां क्या है, परंतु सरकार का जो धर्म है वो यह है कि मीडिया को अंदर लेना चाहिए था, उनको बुलाना चाहिए था।
जी सर, हालिया जो आज का दिन मना रहे हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इसकी थीम रखी गई है अगली पीढ़ी को सशक्त बनाए, सर इससे क्या संदेश देना चाहेंगे? सर
मैं इसमें 2-3 बातें जोड़ना चाहूंगा योगेश भाई कि अगली पीढ़ी सशक्त कैसे बने।
जी
आप दुनिया के किसी भी बात को उठा करके देखिए तो जो बदलाव हो रहा है वो पॉलिटिकली बदलाव हो रहा है और भारत युवाओं का देश है, परंतु आज भारत के युवा के ऊपर किसका सबसे ज्यादा प्रभाव है? आज भारत के युवाओं पे सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभाव दिखाई दे रहा है तो कॉरपोरेट जगत का प्रभाव दिखाई दे रहा है, और कॉरपोरेट जगत उसके सामने एक प्रकार का ऐसा सपना रख रहा है, और केवल कॉरपोरेट जगत ही नहीं, कॉरपोरेट जगत के साथ मिली हुई भारत की बहुत सारी एनजीओ, भारत की बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं और भारत के एक प्रकार से सरकार द्वारा पाले गए लोग यह कहने का काम कर रहे हैं कि नौजवानों को राजनीति नहीं करना चाहिए। यह सवाल भगत सिंह के समय भी आया था कि विद्यार्थियों को राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करना चाहिए, तो भगत सिंह ने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया था कि जो लोग चाहते हैं कि सड़ी गली व्यवस्था बनी रहे और सड़ी गली व्यवस्था और शोषण की व्यवस्था में बदलाव न आए, वही लोग ऐसा सवाल करते हैं, वही लोग ऐसा करते हैं कि विद्यार्थियों को राजनीति में जाने से रोकते हैं। आज आप देख लीजिए कि विद्यार्थियों को राजनीति में जाने से सरकार रोक रही है, सरकार के लोग रोक रहे और अभिभावक भी रोक रहे। दूसरा इसमें कारण है योगेश भाई कि आज का युवा भी क्या करना चाहता है, आज का युवा कौन सी राजनीति करना चाह रहा है? अगर हम लोगों की एक पार्टी है लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी जिसपे हम लोग वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से काम करते हैं, जब हम लोग युवाओं से बात करने जाते हैं कि आप आइए मिलकर के मिशन चलाया जाए, गांधी लोहिया के जयप्रकाश के सपनों को पूरा किया जाए, तो नौजवान का जो सवाल होता है योगेश भाई आप उससे आकलन कर लेंगे, नौजवान कहता है कि आपके पार्टी के कितने सांसद है, आपके पार्टी के कितने विधायक हैं और हमको क्या मिलेगा। अब बताइए जो नौजवान पहले ही लालच की इच्छा कर लिया हो उस व्यक्ति से राजनीति में क्या आप आशा कर सकते। तीसरी जो बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि आज जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां है, जो सत्ता में पॉलिटिकल पार्टियां है, जो अपने को कार्यकर्ता बेस पार्टी कहती है, उनका अगर आकलन उठा करके देख लीजिए तो कार्यकर्ता नहीं बनाना चाहती है, और नौजवानों को राजनीति में ला करके राजनीति नहीं सिखाना चाहती है, बल्कि नौजवानों को राजनीति में ला करके उनका रास्ता भटका करके उनसे पत्थरबाजी कराना चाहती है और उनको गुलाम बनाना चाहती है, कार्यकर्ता नहीं बनाना चाहती है, इन्हें तो डेवलप नहीं होने दे रहे। तो इसके कई कारण है कि विद्यार्थी राजनीति में नहीं आ रहे। एक तो स्वयं उनका कारण है कि विद्यार्थी राजनीति के प्रति सोच नहीं पा रहे, आना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि इसमें हमारा भविष्य उज्जवल नहीं है, इसमें हमको पैकेज नहीं मिलेगा, इसमें हमारे सपने पूरे नहीं होंगे, कार नहीं मिलेंगी, गाड़ियां नहीं मिलेंगी। एक तो उनका सपना भी छोटा हो चुका है, दूसरा कि पॉलिटिकल पार्टियां भी उनको गुलाम बनाना देना चाहती है, इससे भी नौजवान उसमें नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि जो नौजवान है और जो समाज के अच्छे लोग है वो राजनीति में आए, क्योंकि अगर वो राजनीति में नहीं आएंगे तो राजनीति में फैली हुई गंदगी, राजनीति में फैल रही कचरा और राजनीति में जो शोषक वर्ग तैयार हो रहा है वो समाप्त नहीं होगा। तो नौजवानों के लिए, नौजवानों के अपने विकास के लिए, नौजवानों को अपने देश के विकास के लिए, अपने देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए और विशेषकर संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए नौजवानों को चाहिए कि खुलकर के राजनीति में आए, सत्ता की राजनीति में न आए बल्कि सत्ता को त्यागने की राजनीति में आए। वह जयप्रकाश को उठा करके पढ़े, लोहिया को उठा करके पढ़े, चंद्रशेखर को उठा करके पढ़े और बाकी जो लोग रहे नौ विद्यार्थी राजनीति से जो राजनीति में आए उनको उठा करके पढ़े कि वो कभी सत्ता की राजनीति नहीं किए बल्कि गांधी के सपनों के साथ और गांधी के साथ जुड़ करके देश को और देश की जनता को मजबूत करने के लिए राजनीति करते थे।
तो ये थे डॉक्टर अनूप सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की। अनूप सर मोबाइल वाणी पर समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जी योगेश भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और मोबाइल वाणी के माध्यम से मोबाइल वाणी के श्रोताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं।
जी छिंगड़ा वाले इन सबको दोस्त योगेश, धन्यवाद।